एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत और उनकी बनाई कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ मतलब हमारी खरीदारी का तरीका बदला, बल्कि शायद इंटरनेट के युग को ही एक तरह से परिभाषित कर दिया।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस और अमेज़न की, और इसका आधार है ब्रैड स्टोन की 2013 की किताब द एवरीथिंग स्टोर, जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ अमेज़न।
तो ये किताब सिर्फ अमेज़न के बनने की कहानी नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये उसके पीछे जो दिमाग था, जेफ बेजोस, उनकी सोच, उनकी आप कह सकती हैं जिद और उनकी महत्वाकांक्षा की कहानी है। और बेजोस वो सिर्फ अमेज़न के संस्थापक या पूर्व सीईओ नहीं रहे।
हाँ, वो ब्लू ओरिजिन वाले भी हैं, स्पेस में रुचि, फिर वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी, और निवेशक तो हैं ही।
बिल्कुल, तो एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है।
और आज ये कहानी सुनना समझना क्यों जरूरी लगता है? मतलब एक और बिजनेस स्टोरी?
नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून, उसका विजन पूरी दुनिया के कॉमर्स को मतलब बदल सकता है पूरी तरह से।
इसमें टेक्नोलॉजी का उथल पुथल है, कॉरपोरेट जगत की वो अंदरूनी लड़ाइयां हैं।
सही कहा, और एक ऐसे लीडर का पोर्ट्रेट है जो कह सकते हैं काफी कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग उन्हें विजनरी मानते हैं, नायक,
और कुछ
उन्हें एक निर्मम एकाधिकारवादी भी कहते हैं, तो दोनों पहलू हैं।
तो ये किताब असल में अमेज़न के काम करने के तरीके, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं और वो बड़े फैसले जिन्होंने हमारी सदी को शेप दिया, उनकी पड़ताल करती है।
एकदम सही। तो कहाँ से शुरू करें इस सफर को? शायद एकदम शुरुआत से, उनके बचपन से।
हाँ, वो सही रहेगा। कहानी शुरू होती है एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में, जेफरी प्रेस्टन जॉर्गेंसन, उनके माता पिता जैकलिन गीज और टेड जॉर्गेंसन। बहुत यंग थे उस वक्त, टीनेजर्स ही थे।
और शादी ज्यादा चली नहीं?
नहीं, जब जेफ शायद 4 साल के थे, उनकी माँ ने मिगुएल माइक बेजोस से शादी की, जो क्यूबा से आए थे, और माइक ने जेफ को गोद ले लिया।
और जेफ के लिए वही हमेशा असली पिता रहे, माइक बेजोस।
हाँ, किताब में वो एक किस्सा भी है ना, थोड़ा इमोशनल सा, उनके बायोलॉजिकल पिता के बारे में।
हाँ, वो ब्रैड स्टोन ने जेफ के जैविक पिता टेड जॉर्गेंसन को ढूंढा था एरिजोना में। वो एक बाइक की दुकान चलाते थे।
और उन्हें पता भी नहीं था कि उनका बेटा कौन है?
बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि दुनिया का इतना बड़ा आदमी उनका बेटा है। ये कहानी को एक मतलब अलग सा मानवीय टच देता है।
और बचपन से ही जेफ थोड़े अलग थे, मतलब काफी जिज्ञासु।
हाँ बहुत, और बनाने का शौक था। घर का गराज उनकी लैब थी। सोलर कुकर बना रहे हैं या अपने भाई बहन के लिए कोई अलार्म सिस्टम बना दिया।
कमाल है। लेकिन शायद सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उनके नाना का रहा, पॉप गीज।
बिल्कुल, लॉरेंस प्रेस्टन पॉप गीज। जेफ गर्मियां टेक्सास में उनके रैंच पर बिताते थे, बहुत बड़ा रैंच था।
और वहां क्या सीखा उन्होंने?
सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, अपने हाथ से काम करना, जैसे पवन चक्की ठीक करना या जानवरों की देखभाल। और पॉप कीज ने ही उन्हें वो बात सिखाई जो जेफ अक्सर कोट करते हैं।
कौन सी?
चतुर होने से ज्यादा कठिन दयालु होना है। बीइंग काइंड इज हार्डर देन बीइंग क्लेवर।
ये बात उनके जीवन के कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने में शायद मदद करती है।
हाँ शायद, पढ़ाई में तो वो हमेशा तेज थे, स्कूल में वैलेडिक्टोरियन।
और वो स्पेस वाली बात उनके भाषण में।
हाँ हाँ, ये मजेदार है। अपने स्कूल के विदाई भाषण में ही उन्होंने अंतरिक्ष में इंसानों के बसने की बात की थी। शायद ब्लू ओरिजिन का बीज वहीं पड़ गया था।
फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए, पहले फिजिक्स।
हाँ, पहले फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में आ गए और टॉप किया, सुम्मा कम लाउडे। यहीं वो एक सिस्टम थिंकर बने, डेटा ड्रिवन सोच वाले।
प्रिंसटन के बाद सीधा रास्ता वॉल स्ट्रीट।
जी, फिडल, बैंकर्स ट्रस्ट, और फिर पहुंचे डी शॉन कंपनी, एक हेज फंड।
और वहां काफी तेजी से तरक्की की।
बहुत तेजी से, 30 की उम्र में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और उनका काम था नए बिजनेस के मौके ढूंढना।
और यहीं वो बड़ा मोमेंट आया, 1994 का।
हाँ, वो आंकड़ा उन्होंने पढ़ा कि इंटरनेट का यूज मतलब इस्तेमाल हर साल 2300% बढ़ रहा था।
2300%? ये तो
हाँ, ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं थी, ये एक धमाका था। और बेजोस ने इसमें फौरन एक नए तरह के कॉमर्स की, व्यापार की संभावना देखी।
दोनों ने सोचा ऑनलाइन क्या बेचें।
हाँ, एक लिस्ट बनाई कोई 20 चीजों की, और आखिर में आकर रुके किताबों पर।
किताबें क्यों?
लॉजिक सिंपल था, किताबों की लाखों वैरायटी होती हैं, कोई छोटी दुकान रख ही नहीं सकती, और वो खराब भी नहीं होती।
सही,
लेकिन अब बड़ा सवाल,
इतनी अच्छी नौकरी वॉल स्ट्रीट की,
बिल्कुल
मोटी तनख्वाह, क्या उसे छोड़ दें इस एक आइडिया के लिए जो चलेगा या नहीं किसे पता।
और यहीं उन्होंने वो फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया।
हाँ, उनका वो मशहूर रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, पछतावा कम करने का तरीका। कैसे काम करता है ये?
उन्होंने सोचा, जब मैं 80 साल का होऊंगा और पीछे देखूंगा तो मुझे किस बात का ज्यादा अफसोस होगा, कि मैंने ये नौकरी छोड़ी और शायद फेल हो गया, या ये कि मैंने कोशिश ही नहीं की।
और जवाब?
जवाब साफ था, कोशिश न करने का पछतावा ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा दर्द देगा।
तो बस फैसला हो गया।
हाँ, वॉल स्ट्रीट का बोनस छोड़ा, पटनी मैकेंजी स्कॉट के साथ गाड़ी उठाई और सिएटल चल दिए।
कहते हैं रास्ते में वो बिजनेस प्लान लिख रहे थे।
हाँ, मैकेंजी ड्राइव कर रही थी और बेजोस लैपटॉप पर बिजनेस प्लान बना रहे थे। कमाल की कहानी है।
और फिर सिएटल के पास बेलव्यू में एक गैराज से शुरुआत, 5 जुलाई 1994।
कंपनी का नाम पहले कैडिब्रा इंक था।
अच्छा, अमेजोन नहीं?
नहीं, वो बाद में बदला, अमेजोन रखा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर। उनकी एम्बिशन दिखाता है ये नाम।
शुरुआती दिन तो बहुत मुश्किल रहे होंगे।
हाँ बिल्कुल, खुद ही कोडिंग करना, फर्श पर बैठकर किताबें पैक करना, खुद पोस्ट ऑफिस जाना।
वो घंटी वाला किस्सा भी है।
हाँ, ऑफिस में एक घंटी लगाई थी, हर ऑर्डर आने पर बजती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इतने ऑर्डर आने लगे कि घंटी लगातार बजने लगी, बंद करनी पड़ी।
मतलब बिजनेस चल निकला था।
हाँ, तेजी से। और बेजोस का मंत्र था गेट बिग फास्ट, तेजी से बड़े बनो।
ये सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं था।
नहीं, ये सर्वाइवल की स्ट्रेटजी थी। मार्केट में टिके रहना है तो सबसे पहले और सबसे बड़े बनना होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना था।
फिर पैसा उठाया इन्वेस्टर्स से, 1997 में आईपीओ ले आए।
जी, और फिर किताबों से आगे बढ़े, म्यूजिक, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ
मुनाफे की चिंता किए बिना।
हाँ, यही बात वॉल स्ट्रीट को परेशान करती थी। वो लगातार मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे थे, लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, बिल्कुल साफ।
लेकिन फिर वो संकट आया, 2000-2001 का .com क्रैश।
हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था। इंटरनेट कंपनियों का बबल फट गया, कई कंपनियां बंद हो गई।
और अमेज़न?
अमेज़न भी बिल्कुल कगार पर था। शेयर की कीमत $100 से गिरकर $6 से भी नीचे। एक्सपर्ट्स कह रहे थे ये कंपनी अब खत्म।
ये तो मतलब अग्नि परीक्षा थी।
सही कहा, इस संकट ने बेजोस को अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर किया। अब गेट बिग फास्ट नहीं, गेट फिट फास्ट का नारा था।
मतलब?
मतलब खर्च कम करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, हर चीज को डेटा से नापो। उन्होंने करीब 15% लोगों को निकाला भी।
लेकिन इसी दौर में कंपनी की कल्चर भी बनी।
हाँ बिल्कुल, मितव्ययता यानी फ्रुगैलिटी। वो डोर डेस्क इसी समय की देन है, दरवाजों से बनी हुई डेस्क, और सबसे ऊपर ग्राहक पर फोकस, कस्टमर ऑब्सेशन। ये संकट का दौर था जिसने अमेज़न के डीएनए को गढ़ा।
इस संकट से उभरने के बाद तो बेजोस का विजन और भी बड़ा हो गया।
हाँ, अब वो सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं थे, वो इंटरनेट इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे।
और इसी सोच से AWS निकला, अमेज़न वेब सर्विसेज।
सी कंपनियों को किराए पर देना शुरू कर दिया।
ये तो बिल्कुल अलग बिजनेस था।
हाँ, और शुरुआत में किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, कॉम्पिटिटर्स ने मजाक भी उड़ाया।
लेकिन ये चल गया, और कैसे चला?
आज AWS दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और अमेज़न के मुनाफे का सबसे बड़ा सोर्स भी। इसने अमेज़न को एक रिटेलर से एक टेक्नोलॉजी जाइंट बना दिया।
ये साबित किया कि वो सिर्फ सामान नहीं बेचते, वो बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैनेज कर सकते हैं।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कदम था किंडल, 2007 में।
ई रीडर ये क्यों बनाया? ये तो उनके अपने बुक बिजनेस को ही नुकसान पहुंचा सकता था।
यही तो बेजोस की सोच थी। उन्होंने समझा कि डिजिटल बुक्स आएंगी ही, तो कोई और आकर उनके बिजनेस को डिसरप्ट करे, उससे अच्छा है वो खुद ही करें।
सेल्फ डिसरप्शन।
हाँ, उन्होंने टीम को कहा, एक ऐसा डिवाइस बनाओ जिससे किताब खरीदना पढ़ना इतना आसान हो जाए कि लोग डिवाइस भूल जाएं, सिर्फ पढ़ने में खो जाएं।
और किंडल जबरदस्त हिट हुआ।
हाँ, उसने अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा बुक सेलर बना दिया और पूरे पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हिला दिया।
तो 2013 तक, जब ये किताब खत्म होती है, अमेज़न कहाँ पहुंच चुका था?
बेजोस एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुके थे। अमेज़न ने ज़ैपोस, किवा सिस्टम्स जैसी कंपनियां खरीद ली थी, उनका डिलीवरी नेटवर्क लाजवाब था। अमेज़न स्टूडियोज से ओरिजिनल कॉन्टेंट में भी आ गए थे।
मतलब वो सिर्फ एवरीथिंग स्टोर नहीं, एक पूरा एम्पायर बनाने की राह पर थे।
बिल्कुल, नींव रखी जा चुकी थी।
अच्छा, ये तो हुई अमेज़न की कहानी, पर इस सबके पीछे जेफ बेजोस की सोच क्या है, उनका दर्शन, किताब क्या कहती है?
स्टोन कुछ मुख्य बातें बताते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी, कस्टमर ऑब्सेशन, ग्राहक जुनून।
ये अमेज़न का नॉर्थ स्टार है, कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, हर फैसला इसी तराजू पर तोला जाता है। ग्राहक के लिए क्या बेस्ट है, कम दाम, ज्यादा चॉइस, आसानी, भले ही इसके लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट छोड़ना पड़े या सप्लायर से सख्ती करनी पड़े।
वो उनका ईमेल वाला किस्सा, jeff@amazon.com।
हाँ, वो आज भी वो ईमेल एड्रेस देखते हैं। कोई ग्राहक शिकायत करे तो वो बस एक क्वेश्चन मार्क लगाकर टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं।
और फिर
कहते हैं अमेज़न में वो ईमेल एक बॉम्ब की तरह होता है, मतलब उस पर तुरंत एक्शन लेना ही होता है। ये दिखाता है कि ग्राहक कितना सेंटर में है।
कमाल है। दूसरा सिद्धांत,
लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दीर्घकालिक सोच, जिसे वो डे वन मेंटालिटी भी कहते हैं।
डे वन मतलब
हमेशा एक स्टार्टअप की तरह सोचना, भूखे रहना, तेजी से काम करना, एक्सपेरिमेंट करना। बेजोस कहते थे डे टू का मतलब है ठहराव, फिर इरेलेवेंस और फिर मौत।
इसीलिए वो सालों तक बिना मुनाफे के इन्वेस्ट करते रहे।
हाँ, उनके टाइमलाइन वॉल स्ट्रीट से बिल्कुल अलग थी। वो 7-8 साल आगे का सोचते थे।
तीसरा है मितव्ययिता, फ्रुगेलिटी।
हाँ, लेकिन ये कंजूसी नहीं है, ये है रिसोर्सफुलनेस, कम में ज्यादा करना। वो डोरडेस्क इसी का सिंबल है। मानना था कि बाधाएं इनोवेशन लाती हैं।
और चौथा,
इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई, आविष्कार करो और सरल बनाओ। मुश्किल प्रॉब्लम का आसान एलिगेंट सोल्यूशन ढूंढो, चाहे वो वन क्लिक पेटेंट हो या AWS का आर्किटेक्चर। हमेशा बेहतर तरीका ढूंढो, समझौता मत करो।
ये तो हुए सिद्धांत, पर इनके पीछे की प्रेरणा क्या थी, क्या चीजें उन्हें डाइव करती थी?
स्टोन के अनुसार कई चीजें थीं। एक तो उनमें कुछ बनाने की, बिल्ड करने की इच्छा थी, एक बिल्डर का इम्पल्स, बड़ी कॉम्प्लेक्स टिकने वाली चीजें बनाना,
एक ऐसी कंपनी जो पीढ़ियों तक चले।
हाँ, कुछ ऐसा। दूसरी प्रेरणा थी वो पछतावे का डर, फियर ऑफ रिग्रेट,
वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क।
हाँ, वो सिर्फ एक बार का फैसला नहीं था, वो उनकी सोच का हिस्सा था। उन्हें इस बात का गहरा डर था कि कहीं बाद में सोचना न पड़े, काश मैंने वो किया होता। इसी ने उन्हें बड़े रिस्क लेने की हिम्मत दी।
और तीसरा,
एक मिशनरी ड्राइव। उन्हें शायद सच में यकीन था कि अमेज़न का मिशन पृथ्वी की सबसे ग्राहक केंद्रित कंपनी बनना दुनिया के लिए अच्छा है। ये यकीन उन्हें अपनी कई बार एग्रेसिव लगने वाली पॉलिसीज को जस्टिफाई करने में मदद करता था।
मतलब वो अमेज़न को सिर्फ बिजनेस नहीं, एक अच्छी ताकत के रूप में देखते थे।
हाँ, जो ग्राहकों को चॉइस और कम दाम देकर एम्पावर कर रही है।
और जब मुश्किलें आती थीं तो उनका सामना कैसे करते थे, इमोशनल होकर?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ठंडे दिमाग से, डेटा देखकर, प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करना,
जैसे .com क्रैश में किया।
हाँ, उसे पैनिक करने के बजाय कमियां दूर करने और कंपनी को मजबूत बनाने के मौके की तरह देखा।
और फेलियर से डरते नहीं थे?
नहीं, उसे सीखने की कीमत मानते थे। ट्यूशन फीस, कहते थे अगर आप फेल नहीं हो रहे मतलब आप काफी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे।
जैसे वो फायर फोन फ्लॉप हो गया था
बुरी तरह, लेकिन उससे जो सीखा वो बाद में एको और एलेक्सा बनाने में काम आया। हर मुश्किल उनके लिए एक इक्वेशन थी जिसे सॉल्व करना है।
इस पूरी जर्नी में कई टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे, अगर 3 सबसे अहम चुनने हो तो कौन से होंगे?
मुश्किल है, पर शायद पहला तो वही होगा, 1994 में DE Shaw छोड़ने का फैसला।
हाँ, वो सेफ जॉब छोड़कर अनजाने में कूद पड़ना।
बिल्कुल, वो उनके रिग्रेट मिनिमाइजेशन का पहला टेस्ट था और उसी ने उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनाया, अपनी शर्तों पर जीने का पहला कदम।
दूसरा,
मेरे ख्याल से .com क्रैश से बच निकलना, 2000-2001 जब सब खत्म लग रहा था तब टिके रहना।
उसने अमेज़न को कैसे बदला?
उसने अमेज़न को अंदर से मजबूत किया, लापरवाह स्टार्टअप से एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म कंपनी बनाया, ऑपरेशनल एक्सेलेंस की नींव रखी।
और तीसरा?
तीसरा मैं कहूंगी AWS का बनना, 2006 में लॉन्च।
ये क्यों इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था?
क्योंकि इसने अमेज़न को सिर्फ एक ई-कॉमर्स कंपनी से एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस में बदल दिया। ये दिखाया कि उनकी कोर कैपेसिटी सिर्फ रिटेल नहीं बल्कि स्केल पर टेक्नोलॉजी मैनेज करना है, और इसी के पैसे ने बाकी अमेज़न को फंड किया।
ये सब सुनकर लगता है कि ये कहानी तो बहुत बड़ी है, एक आम इंसान इससे क्या सीख सकता है अपने जीवन के लिए?
हाँ, कहानी बड़ी है पर सबक बहुत रिलेटेबल है। पहला तो वही लॉन्ग टर्म विजन। हम सब शॉर्ट टर्म प्रेशर में रहते हैं, करियर में, लाइफ में। बेजोस दिखाते हैं कि धैर्य से कैसे कमाल हो सकता है,
भले ही शुरू में लोग ना समझें।
बिल्कुल। दूसरा सबक है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन वाली सोच, बड़े फैसलों में ये सोचना कि इनएक्शन का क्या अफसोस होगा, ये डर पर काबू पाने में मदद करता है।
तीसरा है रेजिलियंस, मुश्किलों से लड़ने की क्षमता।
हाँ, .com क्रैश ने उन्हें डुबोया नहीं, मजबूत बनाया। लाइफ में झटके लगते हैं, उनसे सीखना और खड़े होना जरूरी है। फेलियर एंड नहीं है, लर्निंग है।
और शायद ये भी कि एम्बिशन कॉम्प्लेक्स चीज है। बेजोस ने अद्भुत काम किया, पर किताब ये भी बताती है कि इसमें एक रूथलेसनेस भी थी, एक डिमांडिंग कल्चर था।
सही, विजनरी लोग अक्सर पोलराइजिंग होते हैं। यही वो नाना की बात फिर याद आती है, दयालु होना ज्यादा मुश्किल है।
और आखिरी सबक,
लगातार सीखना और बदलना, एडेप्ट करना। बेजोस ने जरूरत पड़ने पर खुद को, अपनी कंपनी को बदला, किंडल से अपने ही बिजनेस को चुनौती दी। आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा को अगर 3 पॉइंट्स में समेटना हो, एक इमोशनल, एक इंटेलेक्चुअल और एक यूनिवर्सल, तो वो क्या होंगे?
ठीक है, इमोशनल इनसाइट, जिंदगी के बड़े फैसलों में भविष्य के पछतावे को कम करने के बारे में सोचना हमें डर से आगे बढ़कर बोल्ड कदम उठाने की हिम्मत दे सकता है। इंटेलेक्चुअल इनसाइट, कस्टमर पर फोकस करके एक ऐसा फ्लाईव्हील बनाया जा सकता है जहां कम दाम, ज्यादा ग्राहक, ज्यादा सप्लायर, बेहतर अनुभव और कम दाम, ये साइकिल एक बहुत शक्तिशाली, टिकाऊ कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है। और यूनिवर्सल इनसाइट, दुनिया भले ही तुरंत नतीजों का दबाव बनाए, लेकिन लंबी अवधि की सोच और धैर्य रखना असाधारण सफलता की कुंजी हो सकता है, चाहे शुरू में कोई आपकी बात ना समझे।
ये वाकई बहुत गहरी बातें हैं। बेजोस और अमेज़न की कहानी दिखाती है कि एक आइडिया और जुनून से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। पर यह सवाल भी छोड़ जाती है कि इतनी बड़ी शक्ति और प्रभाव के समाज पर क्या असर होते हैं। शायद ये सोचने के लिए एक अलग विषय है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।